दिन भर 30 दिसंबर सोमवार, मैं हूं आदर्श राठौर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया मंत्रिमंडल का पहला विस्तार, बेटे आदित्य ठाकरे समेत 35 ने ली शपथ, अजीत पवार बने उप मुख्यमंत्री।
उद्धव ठाकरे के लिए भी मुश्किलें बढ़ती है क्योंकि उन्हें सिर्फ शरद पवार के साथ डील नहीं करना है, उन्हें शरद पवार और अजीत पवार के साथ भी डील करना है।
वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज सुनाएंगे साल भर भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का लेखा जोखा।
India winning their seventh consecutive test at home.
पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की डायरी।
सिर्फ 2019 का रजिस्टर ही बंद नहीं हो रहा, हिंदी और उर्दू रेडियो से जुड़ी मेरी यादों का पन्ना भी पलट रहा है।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। महाराष्ट्र में आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ। इस दौरान 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के 13, कांग्रेस और शिवसेना के 10-10, एक निर्दलीय और स्ट्राइक मैनपावर पार्टी के एक विधायक शामिल हैं। साथ ही एनसीपी के नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश सरकार पर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों से बदला लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज कर रही है। उन्होंने ये मांग भी की कि पुलिस और सरकार द्वारा की जा रही हिंसात्मक कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बदले वाले बयान को लेकर कहा कि उन्होंने योगी के कपड़े पहने हैं, मगर उन्हें इसका मतलब पता नहीं है।
ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है। उस धर्म को धारण करिए, उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग और डीजीपी द्वारा तुरंत आदेश जारी करके पुलिस और सरकार द्वारा किए जा रही हिंसात्मक, गैर कानूनी और आपराधिक कार्यवाही को तुरंत रोका जाए।
ये थी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से प्रियंका गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदला लेने वाला बयान नहीं दिया है। ईरान ने उन अमरीकी हवाई हमलों की निंदा की है जिसमें ईरान समर्थित 25 इराकी लड़ाकों की मौत हो गई थी। ईरान ने इस हमले की तुलना आतंकी हमले से की है। अमरीका ने 29 दिसंबर को कताइब हिजबुल्ला संगठन के ईरान और इराक में बने ठिकानों को निशाना बनाया था। अमरीका का कहना है कि ये हमले एक जवाबी कार्रवाई में किए गए थे क्योंकि इस संगठन ने इराक में अमरीकी सेना के ठिकानों पर हमले किए थे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने रूस में कहा कि अमरीका इराक और सीरिया के लोगों का खून बहा रहा है।
बरखिलाफ अमरीका के हजारों माइल दूरतर अज मर्ज़हाय खुदश,
अमरीकी नागरिकों के सीमा से हजारों मील दूर होने के बावजूद भी उनके अधिकारों की रक्षा का बहाना बनाकर वो इराक और सीरिया के लोगों का खून बहा रहे हैं। अमरीका की इराक में हालिया कार्रवाई अस्वीकार्य है, अमरीकी ऐसा ही करते हैं, लेकिन ईरान और रूस मिलकर सीरिया और इराक में शांति लाने का प्रयास करते हैं। ये थे ईरान के विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सूडान की एक अदालत ने एक विरोध प्रदर्शनकारी की हत्या के मामले में सुरक्षा बलों के 27 सदस्यों को मौत की सजा सुनाई है। ये मामला इस साल फरवरी का है। 36 साल के अहमद अल खैर को विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए थे, जिसके चलते सूडान के पूर्व राष्ट्रपति ओमर अल बशीर को अपने पद से हटना पड़ा था। चीनी वैज्ञानिक ह जिनकुई को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। ह जिनकुई ने कहा था कि उन्होंने दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बच्चा बनाया है। शेंजेन शहर की एक अदालत ने उन्हें मानव भ्रूण पर प्रयोगों को लेकर लगे सरकारी प्रतिबंध का उल्लंघन करने का दोषी पाया। जेल की सजा के साथ साथ उन पर 3 मिलियन युआन यानी लगभग 3,06,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ब्रिटेन की एक महिला को रेप के एक मामले में झूठ बोलने का दोषी पाया गया है। महिला ने साइप्रस में कुछ इजरायली युवकों पर गैंग रेप का आरोप लगाया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम दिन भर में मैं हूं आदर्श राठौर। आप ये प्रसारण रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं।
मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़ कथन करतो की
ये आवाज है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार की, जिन्होंने आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जी हां, वही अजीत पवार जिन्होंने कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और लगभग 80 घंटों तक इस पद पर बने रहे थे। अब वो उद्धव ठाकरे की सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ। इसमें 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली। एनसीपी के 13 मंत्री हैं, शिवसेना कांग्रेस के 10-10 मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और निर्दलीय एक और एक विधायक स्ट्राइक मैन पावर पार्टी का, उन्होंने भी शपथ ली। खास बात यह है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मंत्री बने हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार के इस मंत्रिमंडल में क्या खास है, जानने के लिए मैंने बात की बीबीसी मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित से।
पहली बात तो अजित पवार, जिन्होंने 35 दिनों पहले ही देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी, उन्होंने दोबारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद के लिए शपथ ली है। और सिर्फ उन्होंने शपथ नहीं ली है, उनके जो करीबी है ऐसे कम से कम 6 से 7 MLAs हैं जिन्होंने शपथ ली है। इसका मतलब ये होगा कि NCP के अगर 15 मंत्री है इस कैबिनेट में, उसमें से आधे लोग तो अजित पवार के ही हैं। तो शरद पवार को भी अब पार्टी पर पूरी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल होगा। उन्हें हर बात में ये देखना पड़ेगा कि अजित पवार उनके साथ हैं। तो उद्धव ठाकरे के लिए भी मुश्किलें बढ़ती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ शरद पवार के साथ डील नहीं करना है, उन्हें शरद पवार और अजित पवार के साथ भी डील करना है। ये मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी है आदित्य ठाकरे इस कैबिनेट में आना, क्योंकि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पिता पुत्र दोनों एक ही कैबिनेट में हैं। ऐसा पहले हमने करुणानिधि और स्टालिन के साथ देखा है, नारा लोकेश और चंद्रबाबू के साथ देखा है, तेलंगाना में देखा है, पंजाब में देखा है और भी राज्यों में देखा है, लेकिन अब महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा होगा। और बाल ठाकरे जो हमेशा कहते थे कि हम कांग्रेस की तरह नहीं है, हमारे यहाँ एक ही फैमिली पार्टी नहीं चलाती है, लेकिन अब ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुका है कि ये सिर्फ ठाकरे परिवार की पार्टी है। तो ऐसे 3 से 4 लीडर्स कम से कम हैं जिन्हें ड्रॉप किया है और उनकी जगह शिवसेना ने नौजवान MLAs को टिकट दिया है। तो मुझे लगता है कि शिवसेना कोशिश कर रही है अपने पार्टी को बढ़ाने की इस मंत्रिमंडल विस्तार के द्वारा। और एक बात जो मुझे लगती है कि हर एक पार्टी ने कोशिश की है, स्पेशली कांग्रेस पार्टी ने और शिवसेना ने, ऐसे जगह पे उन्होंने मंत्री पद दिए हैं जहां उनकी पार्टी स्ट्रांग नहीं है। तो हर एक पार्टी ने ये सोचा है कि भविष्य में वो कहां बढ़ सकती है और उसके मुताबिक भी उन्होंने मंत्री पद दिए हैं।
इस सरकार में मुसलमानों को भी जो मंत्रिमंडल में जगह दी गई है,
जब भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री पद तो दूर की बात है, टिकट भी नहीं दिए थे, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं यूपी में भी हमने देखा है, लोकसभा इलेक्शंस में भी हमने देखा है। तो ऐसे समय पर ये जो सरकार है शिवसेना कांग्रेस और NCP की, उन्होंने 4 मंत्री मुस्लिम समाज से दिए हैं। शिवसेना के एक हैं अब्दुल सत्तार, कांग्रेस के एक हैं और NCP ने 2 दिए हैं। तो एक तरीके से मुझे लगता है ये एक नेशनल जो पिक्चर है उसके बैकग्राउंड में ये एक बड़ा स्टेटमेंट इस गवर्नमेंट ने किया है। आश्चर्य की बात यह है कि ये गवर्नमेंट शिवसेना लेड है, शिवसेना के मुख्यमंत्री है और उनके मंत्रिमंडल में 4 मुस्लिम मंत्री होंगे।
महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल को लेकर जानकारी दे रहे थे बीबीसी मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित। और श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम में आपकी राय यानी आपकी चिट्ठियों को शामिल करने का। आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और आज भी मैं अकेला हूँ। चिट्ठियों का सिलसिला थमता नहीं दिखता, बहुत सारे संदेश आए हैं, बहुत सारे चिट्ठियां आई हैं और ईमेल्स आए हैं। नैनीताल उत्तराखंड से डॉक्टर शेखर पाठक ने मैसेज भेजा है, कल सुबह देर तक नमस्कार भारत लगाते रहे पर नहीं लगा, सिर्फ रिकॉर्डेड मैसेज चलता रहा, तब समझ में आया कि ये सिर्फ प्रसारण ही नहीं बल्कि एक आवाज का अंत था। दाहोद गुजरात से यूसुफ भाई कपड़िया हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, उन्होंने ये संदेश रिकॉर्ड करके भेजा है।
ऐसा लगता है कि आपके द्वारा लिया गया निर्णय बहुत गलत है और श्रोताओं के साथ किया गया अन्याय के बराबर है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो आसाम में इंटरनेट बंद है, कश्मीर में इंटरनेट बंद है, उत्तर पूर्व में इंटरनेट बंद है, जहीं कहीं तूफान होता है वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। हमारे श्रोता की ओर से सच्ची खबर का एक स्रोत होता है BBC, इसलिए आपको कृपया विनती है कि इस निर्णय पर पूर्ण विचारणा की जाए और सभी श्रोताओं के हित में इस निर्णय को स्थगित किया जाए।
ये थे दाहोद गुजरात से यूसुफ भाई कापड़िया। और बीएस घारटे ने ईमेल भेजा है, लिखते हैं, मैं बीबीसी को 1990 से सुन रहा हूँ। जब से सुबह का प्रसारण बंद होने की खबर सुनी है, तब से ऐसा लगा मानो सच्ची खबरों की एक श्रृंखला समाप्त होने जा रही है। वैशाली बिहार से नावेद अहमद ने लिखा है कि आप जिस तरह से 30 मिनट में दुनिया भर की खबरें मुझ तक पहुंचाते हैं, उसकी वजह से मुझे बीबीसी से प्यार हो गया है। कृपया आप रेडियो कार्यक्रम बंद ना करें। इसी तरह जावेद इस्लाम बरही हजारीबाग झारखंड से लिखते हैं, आप बीबीसी के रेडियो प्रसारण बंद कैसे कर सकते हैं, ये निर्णय अलोकतांत्रिक है। सहरसा बिहार से धीरज कुमार ने लिखा है, जब से सुना है बीबीसी बंद हो जाएगा, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं कि अब समाचार कहां सुनूंगा। और ये ईमेल है गयूर अहमद खान का, कहां से लिखा है नहीं बता, लिखते हैं कि मैं आपको बता दूं 35 वर्ष से मैं आपका कार्यक्रम सुन रहा हूं। आज मैं इसलिए लिखने को मजबूर हुआ कि बीबीसी अपना प्रसारण शॉर्टवेव पर बंद कर रहा है। मेरे जैसे हजारों श्रोता हैं जो बीबीसी सुनते तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे पत्र भी लिखते हों। मेरी बीबीसी से गुजारिश है कि वे हिंदी का प्रसारण बंद ना करें। और ये गोल पहाड़ी जमशेदपुर से बहुत जाना पहचाना नाम जंग बहादुर सिंह, दशकों से सुबह सुबह देश दुनिया की गतिविधियों को जानने समझने का आखिरकार आज शुक्रवार 27 दिसंबर 2019 को अंत हो गया। अंतिम सभा को सुनकर मैं भाव विभोर हो गया, क्योंकि एक ऐसा क्षण था जब आप एक परिवार के सदस्य को स्टेशन छोड़ने आए हों ये जानते हुए कि वो कभी वापस नहीं आएगा। एक ईमेल आया है कृष्ण कुमार का, उन्नाव उत्तर प्रदेश से, लिखते हैं, मैं पिछले 40 साल से बीबीसी सुनता आ रहा हूं। पानी के जहाज पर रेडियो ऑपरेटर था तो सुनता था, फिर नेविगेटर बना तब सुनता हूं, अब रिटायर हो गया हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नमस्कार भारत नहीं सुन पा रहा हूं। तो कृष्ण कुमार जी इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं कि नमस्कार भारत बंद हो चुका है। और ये ईमेल आया है अमन वर्मा का, जिन्होंने लिखा है कि मैं बर्मा का रहने वाला हूं और बहुत छोटी उम्र से ही बीबीसी हिंदी रेडियो सुनता रहा हूं। अंग्रेजी में इन्होंने लिखा है, ये हिंदी भाषी नहीं है। लिखते हैं, बाद में मैं मलेशिया गया और अब अमेरिका में हूं। बीबीसी का न होना आत्मा के बिना शरीर का होना है। मैंने खुद बीबीसी हिंदी सुन सुन कर अपनी हिंदी सुधारी है। कृपया रेडियो बंद ना करें। इसी तरह से जीशान नैयर ग्राम तरैया जिला बेगूसराय से लिखते हैं, जब से सुना है कि बीबीसी हिंदी अपनी रेडियो सेवा बंद करने जा रहा है, तब से मन दुखी सा है। 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, राजेश जोशी और ममता गुप्ता की प्रस्तुति आज भी पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। यादों का ये कारवां जारी रहेगा, हमें जरूर लिखें और हम 31 जनवरी तक, जब तक ये कार्यक्रम है, आपकी चिट्ठियों को बदस्तूर प्रसारित करते रहेंगे। पता नोट कर लीजिए, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार। इस बार पाकिस्तान से वसतुल्ला खान भी रेडियो से डिजिटल के सफर के बारे में बात कर रहे हैं और रेडियो से जुड़ी अपनी यादों को साझा कर रहे हैं। सुनिए।
सिर्फ 2019 का रजिस्टर ही बंद नहीं हो रहा, हिंदी और उर्दू रेडियो से जुड़ी मेरी यादों का पन्ना भी पलट रहा है। नए पन्ने पे भी बहुत कुछ होगा, पर अपने स्वर्गवाश दोस्त जमाल सानी का ये शेर कई दिनों से याद भी आ रहा है। चिराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार, मैं खुद को देख रहा हूँ फसाना होते हुए। या फिर जॉन एलिया का वो शेर के, यही सब कुछ था जिस दम तू यहाँ था, चले जाने पे तेरे जाने क्या नहीं। पर बात यह है कि समय से कैसी लड़ाई, सर्कल ऑफ लाइफ को कौन तोड़ सकता है। कोंपल फूटती है, कोंपल से पौधा बनता है, पौधा जवान होके दरख्त बनता है, और जब अधेड़ उम्री से बुढ़ापे में दाखिल होता है तो छांव घनी होती जाती है और फिर परछाई में बदल जाती है, और इस परछाई से ज़रा परे एक और कोंपल फूट पड़ती है और फिर नए सफ़र पे उछलती कूदती रवाना हो जाती है। कल ही एक शख्स मुझसे पूछ रहा था कि मेरे गांव में तो इंटरनेट नहीं, मेरे टीवी पे जो चैनल्स आते हैं उनमें राजनीतिक बहस के नाम पे सिवाय मुर्गे लड़ाने के कुछ भी तो नहीं होता। आस पड़ोस और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, इससे ना लोकल एफएम को मतलब है ना किसी लोकल टीवी चैनल को। अब बीबीसी भी नहीं सुन पाऊंगा तो कैसे चलेगा। 30-32 वर्ष पहले मैंने दुबई से जो जापानी ट्रांजिस्टर बीबीसी सुनने के लिए ख़रीदा था, अब मैं उसका क्या करूं। मैं इस शख्स की बातें सुनता रहा, बस इतना कह पाया कि भाई बाजार में जो दिखता है वही बिकता है, पीढ़ी बदलती है तो सोच और उपकरण भी बदल जाते हैं, मगर आवाज़ लगाने वाले कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बस नहीं बदलते तो आवाज दबाने वाले नहीं बदलते। जब मैं 28 वर्ष पहले बीबीसी के परिवार में शामिल हुआ तो उस जमाने में कंप्यूटर आम नहीं था, बस एक टीवी की तरह की मशीन हुआ करती थी जिसमें से खबरें और तबसरे निकलते रहते थे। उन्हें हम प्रिंट करके हाथ से तर्जुमा कर लेते, फिर कंप्यूटर आया तो टाइप करने लगे। रिकॉर्डिंग के लिए भारी भारी टेप रिकॉर्डर और लंबी टेपों वाले स्पूल डिजिटल और हल्के होते गए। ब्लेड से टेप काटने और हाथ से एडिटिंग करने की बजाय कंप्यूटर पे माउस के जरिए एडिटिंग होने लगी। फोन की जगह ईमेल ने ले ली और फिर देखते ही देखते रेडियो, टीवी और बाकी सब मीडिया हमारे मोबाइल फोन की कैद में आ गया। अब आगे जाने और क्या क्या चमत्कार होंगे। इस परिवर्तन के बीच नहीं कुछ बदला तो वो दोस्त जो मैंने उर्दू और हिंदी में अब तक कमाए। हम सबको विषाद की जंजीर ने एक दूसरे से मरते दम तक के लिए बांध रखा है, और क्या चाहिए जीने के लिए। नए साल में नई सोच, नया बीबीसी और नई पीढ़ी मुबारक हो। कोशिश करूंगा कि इस बदलाव और नएपन का साथ दे पाऊं, अब जहां तलक भी दे सकूं। रही बात भारत और पाकिस्तान की, तो वो तो बदलने से रहे, मालूम नहीं ये अच्छी बात है कि बुरी।
वज़ीरुल्लाह खान की डायरी के बाद अब विशेष कार्यक्रम में सुनिए भारत के खिलाड़ियों ने साल 2019 में कैसा प्रदर्शन किया।
साल 2019 अब बस यादों में रहने वाला है, और कल रात साल 2020 आधी रात के बाद अपने आगमन की दस्तक दे देगा। लेकिन खेल का मैदान भारत के लिए साल 2019 में कैसा रहा, ये बताने के लिए आपके साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त।
It's a five for Umesh Yadav, consecutive win by an innings and first team to do it in the history of Test cricket.
Congratulations to India and Virat Kohli, and that's the trophy for you. India winning the seventh consecutive Test at home.
इस साल टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की बादशाहत बरकरार रही। भारत ने इस साल अपना आखिरी टेस्ट मैच कोलकाता के एडन गार्डन्स में गुलाबी गेंद से खेले गए ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट मैच के रूप में खेला। भारत ने बांग्लादेश को खेल के तीसरे ही दिन एक पारी और 46 रन से हराया। विराट कोहली ने इस टेस्ट मैच में अपना 27वां टेस्ट शतक पूरा किया, लेकिन मैच के हीरो रहे तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, जिन्होंने पूरे मैच में 9 विकेट हासिल किए। ढलती उम्र में ईशांत शर्मा ने कामयाब होने का नया हथियार ढूंढा।
नॉर्मल आउटस्विंग करता था, मतलब लेफ्ट हैंडर के लिए, तो मेरे को वेरिएशन ऐड करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपकी गेम तभी इंप्रूव होती है जब आप नई वैरायटी अपनी बॉलिंग में लेके आते हो। अब मैं 31 साल का हो गया हूँ, बॉडी काफी ज्यादा बुढ़ी फील करती है क्योंकि इतनी ज्यादा बॉलिंग करने के बाद।
इससे पहले भारत ने इंदौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश को एक पारी और 130 रन से धोया। भारत के मयंक अग्रवाल ने इस टेस्ट मैच में 243 रन ठोके और वो मैन ऑफ द मैच भी रहे, लेकिन गेंदबाजी में मोहम्मद शमी भी चमके और पूरे मैच में उन्होंने 7 विकेट हासिल किए। बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम करने से पहले भारत ने अपने ही घर में दक्षिण अफ्रीका को भी 3-0 से हराया। इस सीरीज की विशेषता ये रही कि भारत ने रोहित शर्मा को सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतारने का प्रयोग किया। रोहित शर्मा ने पहले ही टेस्ट मैच में बतौर ओपनर पहली पारी में 176 और दूसरी पारी में 127 और तीसरे टेस्ट मैच में 212 रन बनाकर इसका जश्न मनाया।
मेरे लिए भी यही था कि अच्छा अपॉर्चुनिटी था ऊपर बैटिंग करने का, तो फुल यूज करना था, नहीं तो फिर मुझे पता था आप लोग काफी कुछ लिख लेते थे मेरे बारे में, तो अभी अच्छी चीज लिखोगे।
भारत और दक्षिण अफ्रीका को अपने घर में हराने से पहले भारत ने वेस्टइंडीज से भी उसी के घर में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीती, लेकिन भारत के कप्तान विराट कोहली के दिल को सबसे ज्यादा चैन मिला ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में मात देकर। भारत ने साल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया से सिडनी में खेला गया चौथा और आखिरी टेस्ट मैच ड्रॉ कराया और सीरीज 2-1 से अपने नाम की।
हमने वो किया जो पहले कभी कोई टीम नहीं कर पाई। मैं जो इतने टाइम से खेला हूं, उस टाइम में मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट है।
एक दिवसीय क्रिकेट में भारत ने इस साल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज को उसी के घर में हराया और अपने ही घर में भी वेस्टइंडीज को मात दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हारा और हारा विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भी। वैसे कप्तान विराट कोहली टीम के प्रदर्शन से खुश हैं।
It's been one of the best years for Indian cricket, to be honest. Apart from playing the cricket that we played for half an hour in the World Cup, I think apart from that, it's been a beautiful year for us.
उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर इस साल भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अगस्त के महीने में वो कर दिखाया जो उनसे पहले किसी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं किया। उन्होंने स्विट्जरलैंड में खेली गई विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप को अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को एक तरफा अंदाज में 21-7 से हराया। अपना सपना पूरा होने के बाद सिंधु का खुशी से झूमना लाजमी था।
I want for my country and I'm really very proud about it, being an Indian.
विश्व चैंपियनशिप के अलावा पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में भी पहुंची, लेकिन वहां वो जापान की अकाने यामागुची से 21-15, 21-16 से हार गई। साल के बाकी टूर्नामेंट ऑल इंग्लैंड ओपन, जापान ओपन, चाइना ओपन, डेनमार्क ओपन, फ्रेंच ओपन और हांगकांग ओपन में उनके हाथ निराशा ही लगी। विश्व चैंपियन बनने के बाद शायद सिंधु को तब बड़ा झटका लगा जब उनकी कोरियन कोच किम जू ह्यून वापस लौट गई। उनके प्रदर्शन से बेहद हैरान हुए पूर्व एशियन चैंपियन दिनेश खन्ना।
मेरे ख्याल में उनको मानसिक तौर के ऊपर सपोर्ट देने की जरूरत है।
पीवी सिंधु तो खैर फिर भी विश्व चैंपियन तो है, लेकिन भारत की एक और स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल की तो हालत ये है कि वो अपनी खराब फॉर्म और फिटनेस के कारण प्रीमियर बैडमिंटन लीग में उतरने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकी तो पूरे साल एक टूर्नामेंट जीत सकी, वो भी तब जब इंडोनेशियन मास्टर्स के फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन पहले गेम में 10-4 से आगे थी, लेकिन उसके बाद वो चोट के कारण मुकाबले से हट गई। अब बात पुरुष खिलाड़ियों की, जहां के श्रीकांत इंडिया ओपन के फाइनल में पहुंचे लेकिन डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से मात खा गए। के श्रीकांत कभी दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी थे, लेकिन अब वो 12वें पायदान पर हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे साल उन्होंने क्या किया, लेकिन जिस खिलाड़ी से उम्मीद नहीं थी उसने कमाल किया। बी साई प्रणीत ने इसी साल विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। उन्होंने सिंगापुर ओपन जीता और स्विस ओपन के फाइनल में हारे। पुराने धुरंधर कश्यप कनाडा ओपन के फाइनल में पहुंचे लेकिन हार गए। पुरुष युगल वर्ग में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थोड़ा बहुत छाई रही। इस साल इस जोड़ी ने थाईलैंड ओपन और ब्राजील इंटरनेशनल जीता तो फ्रेंच ओपन के उप विजेता रहे। यूं तो कुश्ती में महिला और पुरुष पहलवानों ने पूरे साल अनेक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में धोबी पछाड़ जैसे दाव लगाए और ढेरों पदक भी जीते, लेकिन सबकी नजरें तो कजाकिस्तान में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पर लगी थी, जिसके माध्यम से जापान के टोक्यो शहर में होने वाले ओलंपिक खेलों का टिकट मिलना था। भारतीय पहलवानों ने भी बहुत अधिक निराश नहीं किया और 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित 5 पदक हासिल किए। इनमें फ्री स्टाइल पुरुष वर्ग में 57 किलो भार वर्ग में रवि कुमार दहिया, 61 किलो में राहुल अवारे, 65 किलो में बजरंग पूनिया ने कांस्य और 86 किलो में दीपक पूनिया ने रजत पदक जीता। महिला वर्ग में विनेश फोगाट ने 53 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता और इसके साथ ही रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया और विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक में खेलने का हक भी हासिल कर लिया। राहुल अवारे का भार वर्ग ओलंपिक में शामिल नहीं है। विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता तो साल 2014 और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। उन्होंने साल 2018 में एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता। विनेश फोगाट ओलंपिक में जगह बनाने वाली अभी तक तो इकलौती महिला पहलवान है।
वर्ल्ड चैंपियनशिप की सभी वर्ल्ड के टॉप एथलीट आते हैं, उनमें से मेडल निकालना पहले मिल गया है कोटा, तो भी मेरे पास प्रिपरेशन के लिए काफी टाइम मिल गया। मुझे ओलंपिक्स का बाकी है, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज हुआ है, गोल्ड नहीं हुआ है, मेहनत करूंगे तो शायद वो गोल्ड में तब्दील होगा।
दीपक पूनिया ने 86 किलो भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाई। हालांकि विश्व चैंपियनशिप में उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा क्योंकि वो टखने में चोट के कारण फाइनल नहीं खेल सके। खैर अब वो पूरे इत्मीनान के साथ टोक्यो की तैयारी कर सकेंगे।
थोड़ा ठीक होने के बाद भी से ओलंपिक के लिए तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। अब तो सबसे बड़ा सपना यही है कि ओलंपिक में मेडल लेके आए।
ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना दीपक पूनिया का, लेकिन टोक्यो में पदक की सबसे बड़ी उम्मीद बजरंग पूनिया से है। इन्हें इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वो विश्व चैंपियनशिप में एक रजत और दो कांस्य पदक जीतने वाले भारत के अकेले पहलवान हैं।
अच्छी तैयारियां चल रही है और मैं पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि कोई कमी ना रहे, क्योंकि खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक मेडल जीतना और मेरा भी सपना है कि मैं देश के लिए मेडल जीतूं।
पिछले रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। टोक्यो में पहलवान क्या करते हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी कुछ और पहलवान भी टोक्यो का टिकट हासिल कर सकते हैं। इस साल भारतीय निशानेबाजों ने अपनी निगाहें लक्ष्य पर रखी और सटीक निशाने लगाए, जिसका परिणाम ये निकला कि 15 निशानेबाज, जिनमें महिला और पुरुष शामिल हैं, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जगह बना ली। रियो ओलंपिक में 12 निशानेबाज थे, लेकिन पदक किसी को भी नहीं मिला। टोक्यो में अंजुम मुदगिल और अपूर्वी चंदेला 10 मीटर एयर राइफल में, सौरभ चौधरी, मनु भाकर और यशस्विनी देसवाल 10 मीटर एयर पिस्टल में, राही सरनोबत और चिंकी यादव 25 मीटर एयर पिस्टल में, अभिषेक वर्मा एयर पिस्टल में, दिव्यांश सिंह पवार एयर राइफल मिश्रित टीम में, संजीव राजपूत, तेजस्वनी सावंत और ऐश्वर्य सिंह तोमर 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में, अंगद बाजवा और मेराज अहमद खान स्कीट में और दीपक कुमार 10 मीटर एयर राइफल में पदक पर निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी केवल 17 साल की मनु भाकर से, जिनकी उपलब्धियां असाधारण है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट तो हासिल किया, लेकिन क्या पदक भी जीत पाएगी, क्योंकि उसके पूल में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, न्यूजीलैंड और मेजबान जापान जैसी टीमें हैं। साल 1964 में टोक्यो में ही हुए ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के अहम खिलाड़ी रहे गुरबख्श सिंह कहते हैं,
मेरे हिसाब से पूल बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम दूसरे पूल में होते तो उस पूल में भी हमको बेल्जियम, हॉलैंड या जर्मनी, ये तीन टीमें मिलती।
पूल की चार टॉप टीमें क्वार्टर फाइनल खेलेंगी और इससे आगे का रास्ता मुश्किल मानते हैं साल 1975 में विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य और पूर्व ओलंपियन रहे असलम शेर खान।
जापान से हम लोग ऊपर हो सकते हैं, हम लोग इसमें एकाध अपसेट कर सकते हैं स्पेन को या न्यूजीलैंड को, लेकिन अभी उस लग्गे की हॉकी बनी नहीं पाई है पूल क्वालिफाई कर पाएगी इस पूल में भी।
भारतीय महिला हॉकी टीम को टोक्यो में नीदरलैंड्स, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ रखा गया है। कप्तान रानी रामपाल जानती है पदक के लिए नाको चने चबाने होंगे।
कोई भी टीम किसी से हारना नहीं चाहती और इन ओलंपिक की हर कोई जीतना चाहता है, हम भी फाइट करेंगे बिकॉज हम भी जीतना चाहते हैं।
मुक्केबाजी में इस साल भारतीय पुरुष मुक्केबाजों ने रूस में हुई विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। अमित पंघाल ने फ्लाईवेट वर्ग में फाइनल में तो जगह बनाई, लेकिन वहां वो उज्बेकिस्तान के शाखोबिदीन से एक तरफा 5-0 से हार गए। उनके अलावा लाइटवेट में भारत के मनीष कौशिक को कांस्य पदक मिला। अमित पंघाल की निगाहें अब टोक्यो ओलंपिक के पदक पर लग गई हैं।
मेरी अभी सबसे बड़ी तमन्ना यही है टोक्यो ओलंपिक्स हैं, उनमें अपने देश को एक गोल्ड मेडल दिला पाऊं।
दूसरी तरफ रूस में ही समाप्त हुई विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के नाम एक रजत और 3 कांस्य पदक सहित 4 पदक रहे। भारत की मंजू रानी ने रजत और स्टार मुक्केबाज मैरी कॉम के लवलीना बोरगोहेन और जमुना बोरो ने कांस्य पदक जीते। ये मैरी कॉम का विश्व चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 8वां पदक है, जिसमें 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक भी शामिल हैं।
मेरे जैसे कोई पैदा कभी नहीं होगा, मतलब जल्दी नहीं होता है, मैं क्या बोलूं, सबको मेरे जैसा बनाना चाहता है तो नहीं हो सकता ना।
एमसी मैरी कॉम ने साल 2010 में लंदन ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था, लेकिन टोक्यो में जाने से पहले भारतीय पुरुष और महिला मुक्केबाजों को कई बाधाएं पार करनी होंगी। उन्हें ओलंपिक क्वालिफायर में हिस्सा लेना है। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और 3 पुरुष खिलाड़ियों ने देश को ओलंपिक कोटा दिलाया है। कुछ और खेलों में भी भारत को कामयाबी मिली, लेकिन अगले साल सबकी नजरें ICC 2020 वर्ल्ड कप और अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अलावा टोक्यो ओलंपिक पर होगी। तो भारतीय खिलाड़ियों के इस साल के लेखे जोखे में इतना ही।
तो आज दिन भर में इतना ही। स्टूडियो संभाला रविशंकर कुमार ने। कल शाम 7:30 बजे फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।